आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा वक्फ संशोधन विधेयक हुआ पेश, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। प्रदेश की चार सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। गुजरात के पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, कहा मजदूरों के शवों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। और प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी, अनूपपुर जिले में जन आंदोलन के रूप में हो रहा है कार्य। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक को पहले ही मंजूर कर चुकी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है।
ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
इसके पहले ही चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी और अन्य मुद्दों पर अपनी विफलता छिपाने के लिए विधेयक लाई है। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम लाने के प्रावधान ही नहीं है।
वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान लो
लोकसभा में पेश हुए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के समर्थन में भोपाल के हथाईखेड़ा स्थित मस्जिद रहमत के सामने मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि हमारे हित में फैसला है, हम दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने खुशी जाहिर की है। श्री सारंग ने कहा कि वक्फ बोर्ड से केवल बेजा कब्जा करने वाले अमीर मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है।
संशोधन जो बिल आया है उसको लेकर वो चंद करोड़पति अरबपति नेता जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर रखा है वो प्रचार कर मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। पर आज जिस प्रकार से भोपाल में हजारों की संख्या में मुस्लिम हिंदू भाई और बहनों ने जो मोदी जी के समर्थन में और बिल के समर्थन में जो उत्साहवर्धन दिखाया है वो इस बात का परिचायक है कि चंद वो मुस्लिम नेता जो केवल गुमराह करने की राजनीति करते हैं आज एक्सपोज हुए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को चार सड़क परियोजनाओं की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने आज सोशल मीडिया पर बताया कि मध्य प्रदेश के लिए 4,302.93 करोड़ रुपए की चार महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें भोपाल जिले में संदलपुर से नसरुल्लागंज बायपास तक 4 लेन, विदिशा और सागर जिले में राहतगढ़ से बेरखेड़ी तक को 4 लेन, सागर जिले में लदहरा गांव जंक्शन से बेरखेड़ी गुरुगांव जंक्शन तक ग्रीन फील्ड 4 लेन, सागर पश्चिमी बायपास तक ग्वालियर शहर के पश्चिमी हिस्से में एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन बायपास के निर्माण शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की धरती को नक्सल गतिविधियों से मुक्त करने के लिए राज्य पुलिस बल का अभियान तेजी से जारी है। उन्होंने कहा है कि मंडला जिले में नक्सली कार्यों में संलिप्तों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में हॉक फोर्स के जवानों ने 14-14 लाख रुपए की इनामी 2 महिला नक्सली को मार गिराया है। इनके कब्जे से हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद भी जब्त किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया संदेश में नक्सलवाद के खात्मे पर पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वर्ष 2019 और 2016 के बाद ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पिनतोक तार्न शिनवात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शुक्रवार को होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, अनुकूल और मुक्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 7 तारीख से पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। पुर्तगाल की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति मार्सिलो रेबोलो डिसूसा से मिलेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुजरात के बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना अत्यंत दुखद और कष्टदायी है। पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मृतकों की पार्थिव देह उनके गृहग्राम और परिजन तक पहुंचाने की सभी जरूरी व्यवस्थाएं तेजी से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से हादसे का शिकार हुए सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायल श्रमिकों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। अनूपपुर जिले में जल संरक्षण को लेकर शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन का रूप ले रहा है। यह अभियान पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। इसमें जल संरक्षण, रिनोवेशन, जल संरचनाओं का पुनर्जीवन और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि
इस अभियान के दौरान खेत तालाबों के निर्माण, भू जल संवर्धन हेतु कुएं के निर्माण, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के तालाबों आदि का जीर्णोद्धार, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जितनी भी नहरें हैं उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराना, वहां पर समस्त सुविधाएं सुनिश्चित करना, शहरी क्षेत्र में बगीचों को चिन्हांकित कर हरित करना, ग्रीष्मकालीन व्यवस्था के तहत पेयजल सुविधा सुनिश्चित करना एवं नगरीय निकायों में जो भी संग्रहण संरचनाएं हैं उनका जीर्णोद्धार करना। पर्यावरण विभाग द्वारा भी अनेक अन्य गतिविधियां संचालित की जाएगी।
वहीं खंडवा में नगर निगम द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत झीलोद्यान में पौधरोपण अभियान का शुभारंभ कल महापौर अमृता अमर यादव द्वारा पौधा लगाकर किया गया। उधर गुना में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले की पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और मरम्मत कर उन्हें उपयोगी बनाया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नीमच में पंख अभियान के तहत रामपुरा तहसील के ग्राम ब्रह्मपुरा में SDM की उपस्थिति में युवाओं के लिए स्वरोजगार शिविर आयोजित किया गया। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कल हुई TL की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार की जाए। केंद्रों पर उपार्जन संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहें। अशोकनगर जिले में स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है। अभियान के दौरान 4 अप्रैल तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुना में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहडोल जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितताओं की जाँच के आदेश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।